तो हम चर्चा कर रहे थे गृहस्थों के जीवन में मंगल कैसे समाए। गृहस्थों की जीवनचर्या में जो अनेक मंगल हैं उनमें से एक बहुत प्रमुख दान का मंगल। भगवान ने कहा, गृहस्थों के लिए कहा, दानं ददन्तु सद्धाये, शीलं रक्खन्तु सर्वदा, और भावनाभिरता हुन्तु। भावनाभिरता हुन्तु एतं बुद्धान शासनं। सभी बुद्धों की यही शिक्षा है, यही शासन है, दानं ददन्तु सद्धाये। गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसे अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन कमाना होता है, कोई दोष की बात नहीं। लेकिन केवल धन संग्रह किए जाए तो हानि होती है। कहा गया ना, बहता पानी निर्मला, नदी का पानी बहता है तो निर्मल है, और किसी तालाब में जाकर रुक जाता है तो गंदा हो जाता है, बीमारी का घर हो जाता है, मच्छरों का जन्म स्थान हो जाता है, मच्छरों का निवास स्थान हो जाता है। बहता पानी निर्मला, एक ओर मेहनत करें कमाए और दूसरी ओर दान भी करें और यूं चलती रहे जीवन धारा। लेकिन श्रद्धा के साथ दानं ददन्तु सद्धाये, बिना श्रद्धा के दान देवे तो दान लेने वाले की भी कोई लाभ नहीं हुआ। मान सहित दान देता है तो लेने वाले का भी भला होता है, बिना मान के दान दिया जाता है तो लेने वाले की भी हानि होती है। इसीलिए कहा गया, मान सहित विष खाय के, मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिया और राहु कटायो शीश। राहु का मान नहीं था तो शीश कटा उसका, और जहाँ सम्मान था वहाँ जगदीश हुआ। पौराणिक कथाएं हैं, पर भावना समझनी चाहिए। दान देने वाले की भी श्रद्धा और पाने वाले की भी के भी मन की प्रसन्नता। रही मन मोहिन सुहाय अमी पियावत मान बिन, रहिमन मोहि न सुहाय अमी पियावत मान बिन। बिना मान के अमृत पियाया जाता है तो ही मुझे अच्छा ना लगता। भरु विष देय बुलाय, मान सहित मरिबो भलो। अगर सम्मान के साथ कोई विष भी देता है तो विष पी करके मर जाना अच्छा है, लेकिन बिना मान के अमृत दिया गया भी अच्छा नहीं। देने वाले के चित्त की चेतना कैसी, लेने वाले पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। किसका किस तरह का दान, बहुत तरह के दान होते हैं। भौतिक दान होता है, भूखे को भोजन दिया भौतिक दान हुआ, प्यासे को पानी दिया भौतिक दान हुआ, रोगी को दवा दी भौतिक दान हुआ, नंगे को कपड़ा दिया भौतिक दान हुआ, रोगी को दवा दी भौतिक दान है ही। लेकिन इन सब से बढ़ करके है धर्मदान, क्योंकि अगर भूखे को रोटी दी उसका पेट भरा, अच्छी बात है, अच्छा दान है, दूसरे दिन फिर भूखा। प्यासे को पानी दिया फिर प्यासा, रोगी को औषधि दी फिर रोगी हो जाएगा। धर्म दे तो सबसे बढ़कर धर्म का दान, आज भी कल्याण होगा और कदम कदम कल्याण ही होता चला जाएगा, सारे जीवन कल्याण होगा, इस जन्म के बाद भी कल्याण होगा। धम्म दान सब दानों से बढ़कर के, सब दानं धम्म दानं जिनाति, जितने भी दान हैं धर्म दान उन सब से बढ़कर के है। धर्म का दान किसी को दिया जाए, धर्म का दान किसी को प्राप्त हो, कितना बड़ा मंगल। भगवान के जीवन काल की एक घटना अनाथ मेंढक श्रावस्ती का रहने वाला, कभी कभी व्यापार धंधे के लिए, कभी कभी पारिवारिक कारणों से अपने ससुराल राजगृह चला जाया करता। एक बार जब राजगृह गया तो देखता है कि उसका साला बहुत व्यस्त है। हमेशा तो जब वो जाए तो उसकी आवभगत में व्यस्त रहता है, आज तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है, और सबके सब नौकर चाकर घर के परिवार के लोग सारे व्यस्त हैं, बात क्या है। तो पता लगा कि कल सुबह भगवान बुद्ध अपने संघ के साथ यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। अनेक जन्मों की पुण्य पारमी थी, ये सुनते ही रोमांच हुआ। भगवान बुद्ध, कुछ संसार में कोई व्यक्ति बुद्ध हुआ है और वो कल आ रहे हैं यहाँ पर, कल सुबह उनके दर्शन होंगे। सारी रात रहा नहीं गया, सुबह कब आए, रात को बार बार जागता है, अभी सुबह नहीं हुआ। अभी रात नहीं बीती तो भी उठकर चल पड़ा, नगर के बाहर भगवान ठहरे हुए थे वहाँ पहुँचा। भगवान उस समय चहलकदमी कर रहे थे, संक्रमण करते हुए ध्यान कर रहे थे। इसको देखा तो बड़े मैत्री चित्त से कहा, आओ सुदत्त, इसका अपना नाम था सुदत्त, नाम इसका पड़ गया लोगों में अनाथ पिंडक, बहुत धनवान व्यक्ति, भारतवर्ष में ही जगह जगह उसकी व्यापार की शाखाएं नहीं, भारत के बाहर भी अनेक विदेशों में उसकी व्यापार की शाखाएं, और जहाँ जहाँ इसके व्यापार की शाखाएं वहाँ वहाँ कोई आदमी भूखा नहीं सो सकता, ये उसका नियम। जहाँ जहाँ इसका व्यापार चलता है वहाँ वहाँ लोगों को भोजन मिलना ही चाहिए, एक वक्त का भोजन तो उसके यहाँ से मिलेगा ही। अनाथों को पिंड देने वाला अनाथ पिंड, लोग उसको इसी नाम से जानते हैं। और भगवान ने कहा आओ सुदत्त, तो रोमांच हुआ, ये मेरा नाम जानते हैं सुदत्त। खैर वो तो अलग बात हुई, लेकिन बात करते 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 भगवान की मधुर वाणी सुनते सुनते, भगवान की वाणी में कुछ ऐसी विशेषता, एकदम मेटेलिक वॉइस, निन्नाती आवाज़, बोलते हैं तो तरंगे और सुनने वाले को तरंगे, तो वो तरंगों के साथ सुनते 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 निर्वाणिक अवस्था में चला गया। थोड़े क्षणों के लिए श्रोतापन्न हो गया, अब तो कहना ही क्या, इतनी शांति इतना सुख। जब भगवान आए भोजन के लिए आए, भोजन का काम पूरा हुआ, तब कहता है महाराज आप इस बार अपना चौमासा वर्षा ऋतु का समय श्रावस्ती में आके बिताइए, वहाँ मैं आपको एक विहार बना दूँ, उस विहार में आप रहेंगे तो मैं जानता हूँ कितनों का कल्याण होगा। श्रावस्ती उन दिनों के भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली नगरी, इतनी घनी आबादी, इतना बड़ा व्यापार धंधा, इतने तरह के लोग, कितने व्याकुल। जैसे मुझे आंतरिक शांति मिली, सुख मिला जो धन से नहीं मिला कभी, वो इनकी वाणी से मिला, इनकी शिक्षा से मिला, अंतर्मुखी होकर देखने से मिला। अरे ऐसा सुख को लोगों को मिले, जो एक बार स्वयं अमृत चख लेता है उससे रहा नहीं जाता, अधिक से अधिक लोग ऐसा अमृत चखें, अधिक से अधिक लोगों को ये विद्या मिले, अंतर्मुखी होकर के सच्चाई को देखते 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 शरीर और चित्त के अनित्य क्षेत्र का अतिक्रमण करके उससे आगे के नित्य शाश्वत ध्रुव की का साक्षात्कार कर लें, ऐसे मन में जागे उसको। बहुत कहा भगवान को कि आप इस वर्षावास में वहाँ आइए और मैं सारा प्रबंध करूँगा। भगवान मुस्कराए तो समझा मान गए हैं, शीघ्रता करके पहुँचा। अब वहाँ कोई उपयुक्त स्थान होना चाहिए, न शहर के बीच में हो कि जहाँ भीड़ भाड़ है, हल्ला गुल्ला है, लोग ध्यान कैसे करेंगे, और न शहर से इतनी दूर हो कि लोगों को आने जाने की असुविधा हो। उपयुक्त जगह ढूंढता है, बहुत से लोगों के फार्म हाउस थे इधर उधर, नहीं पसंद आए। राजा के राजकुमार का एक फार्म हाउस, राजा का राजकुमार जेठ उसका जेतवन, उसका नाम जेतवन, ऐसा उद्यान वो देख करके उसका मन प्रसन्न हुआ, यहाँ भगवान का विहार बने तो अनेकों का कल्याण होगा, ये खरीदना है, ये खरीदना है दान देने के लिए, इसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो। इसलिए तो जेतराज कुमार के साथ पास जाता है, मुझे आपका जेतवन खरीदना है। अरे बेचने के लिए नहीं है, मेरे आमोद प्रमोद के लिए है, आप कोई दाम तो बताइए, कोई कीमत नहीं, बेचने की हो तो कीमत बताए ना, कोई कीमत नहीं, तुम सारी धरती को सोने से ढक दोगे तो भी कीमत पूरी नहीं होगी। सोने से ही ढक दूंगा, सारी धरती को सोने से ढक दूंगा, आप मुझे ये जमीन दीजिए। राजकुमार देखता है ये सेठ पागल हो गया, इतनी बड़ी जमीन, इतनी एकड़ जमीन, और उस सबको सोने की मोहरों से ढकेगा, अरे कितने करोड़ों की कीमत हो गई, दी गई, अब वो ढक रहा है। मन में एक ही भावना है, यहाँ भगवान का विहार बनेगा, ध्यान केंद्र बनेगा, इतना विशाल जगह है, 10,000 भिक्षु एक साथ बैठ करके ध्यान करेंगे, कितना मंगल होगा। और भिक्षु ही नहीं, इस नगर के कितने दुखियारे लोग आकर के धर्म सीखेंगे, साधना सीखेंगे, इस शांति के स्थान पर, धर्म के स्थान पर कितनों को शांति मिलेगी। मन पुलक रोमांच से भरा हुआ, गाड़ियों पर गाड़ियां आ रही है और वो धन बिछा रहा है, धान्य गाड़ियां आ रही है और वो सोने के महरे बिछा रहा है, थोड़ी सी जगह बच गई तो राजकुमार आता है, देखता है ये पागल हो गया, क्या कर रहा है। जब उसने बताया कि यहाँ भगवान बुद्ध आने वाले हैं और उनका विहार बनेगा, इसलिए मैं इसे खरीद रहा हूँ इस दाम पर भी, तो उसके मन में भी चेतना जा गई, अरे लोक कल्याण है, दान से इतना बड़ा लोक कल्याण हो, सभ्यदानंग धम्मदानंग जनाति, यहाँ धर्म का दान दिया जाएगा, इतना बड़ा कल्याण होगा, बस जितनी धरती तूने ढक दी सो ढक दी, जो बची है वो मेरा दान। अनाथ पिंडक ने भी देखा अच्छा है, राजकुमार भी इस दान में साथ दे लेता है तो उसका ही भला होगा, और लोगों को भी लगेगा कि राजकुमार का दान है, अनाथ पिंडक का दान है। दान में किसी का सहयोग होता है तो अच्छी बात होती है, ऐसी एक परंपरा भी है, जहाँ कोई बहुत बड़ा दान होता है वहाँ अनेक लोग मिल करके उसमें साथी हो जाते हैं। ये धर्म का दान, मन में यही चेतना, कैसे लोक कल्याण हो, कैसे लोक कल्याण हो। नियम था उसका कि जब जब वो जेतवन में जाकर के ध्यान करेगा, भगवान के प्रवचन सुनेगा, भिक्षुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, तो कुछ न कुछ आवश्यक चीज़ें अपने साथ ले जाएगा दान देने के लिए। उतार चढ़ाव गृहस्थ के जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उसका सारा धन समाप्त हो गया, बहुत बड़ा घाटा लगा, बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ उसकी शाखाएँ थी वो सारी डूब गई, उसका जो माल मत्ता कहीं रास्ते में जा रहा था बड़ी बड़ी जहाज में वो डूब गया, लोगों से पैसा लेना था वो डूब गया, एकदम धनहीन हो गया। अब जाए तो रोज खाली हाथ नहीं जाएगा, तो क्या करे। जब धनवान था उसने भी अपना एक बगीचा बना रखा था और उसमें उपजाऊ धरती, इधर की उधर की कहाँ कहाँ की ला करके उपजाऊ धरती, उपजाऊ मट्टी वहाँ रखी ताकि उसके जो पेड़ पौधे हैं वो खूब खूब खिलें, उसमें खूब फल फूल उपजे। दो मुट्ठी वो उपजाऊ मट्टी की लेता है और जेतवन में आकर के किसी पेड़ की जड़ में डाल देता है, मेरी इस मिट्टी से ये पेड़ फले और फूले, इस पेड़ के नीचे बैठ के कोई ध्यान करे और उसका मंगल हो जाए। दो मुट्ठी मट्टी है या करोड़ों रुपये की धरती है जो सोने से ढक करके दी गई, चेतना क्या है, चेतना की महत्ता है। दान किस लिए देते हैं, दान जो दिया वो अपना हो गया। भगवान ने क्या, किसी घर में आग लग गई तो क्या करता है घर वाला, अपने आप को तो बचाता है, उस आग के बाहर निकलता है और जो सामान निकाल सकता है वो निकालता जल्दी जल्दी, जितना निकाल लिया वो बच गया, बाकी सारा जल गया। भगवान कहते हैं जो तुमने दान दे दिया सो बच गया, वो तुम्हारे साथ जाएगा अगले लोक में, अगले जन्म में, बाकी तो सब यहीं समाप्त होने वाला है। तो जो दान दिया वो अपना है, बाकी और अपना नहीं है। ऐसे उस समय लोग थे उस समय भी जो दान के महत्व को नहीं मानते थे। अरे क्या पड़ा है, क्या पड़ा है दान में, यावत जीवित सुखम जीवित ऋण कृत्वा घृतंग पीवित, क्या इसमें पड़ा है, खाओ पियो मौज करो। कोई देने से कोई बड़ा पुण्य हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद शरीर जलकर राख हो जाता है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर जन्म नहीं होता। यह नास्तिकवाद उन दिनों का नास्तिकवाद था, जो आगे जाकर के बदलता चला गया। आगे जाकर न जाने किसको किसको नास्तिक कहने लगे। भारत की पुरानी भाषा में नास्तिक उसको कहते थे जो कर्म के अनुसार कर्म फल मिलता है इस बात को नहीं मानते, सत्कर्म का सत्फल मिलता है इसको नहीं मानते, दुष्कर्म का दुष्फल मिलता है इस बात को नहीं मानते। जो लोग ऐसे लोग जो नास्तिक थे वो धर्म से बहुत दूर। लेकिन जिसको धर्म में जीना है उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण बात है, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल, जानता है। दान देना बड़ा दुष्कर होता है, धन गमा करके इतनी आसक्ति होती है उसके साथ, मेरा मेरा मेरा, देने को जी नहीं चाहता, बड़ा कठिन काम है। जैसे घर छोड़ के तपस्या में जाना कठिन काम है, वैसे धन कमा करके दान देना कठिन काम है। लेकिन ये कठिन काम करके ही गृहस्थ इस जीवन में भी सुखी रहता है, आगे जीवनों में भी सुखी रहता है। बहुत बड़ा पुण्य है, इस पुण्य के काम में कोई रोक लगाता है तो बड़ा अनर्थ करता है, अपने लिए पाप संग्रहित करता है। कोई व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ दान दे रहा है और जिसको दान दे रहा है वो हमारे संप्रदाय का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, हमारी मान्यता का नहीं है, तो उस बाधा पैदा करें, अरे किसको दान दे रहे हो, इसको दान देने से क्या फल मिलेगा, इत्यादि इत्यादि ऐसी बाधा पैदा करता है, तो अपना भविष्य बिगाड़ता है। और जो दान दे रहा था उसको रोक करके उस बेचारे की भी हानि करता है, जिसको दान दिया जा रहा था वो दान रोक करके उसकी भी हानि करता है। कभी दान देने में कभी बाधक न बने, कभी बाधक न बने, साधक भले बने। कोई दान दे रहा है तो प्रोत्साहन दें उसे, अरे केवल इकट्ठा करके क्या करोगे, बहता पानी निर्मला, एक ओर आता है धन दूसरी ओर ध्यान में लगता है, अच्छे काम में लगता है। दान देना ही चाहिए, और दान भी समय समय के अनुसार। भूखा है उसको उस समय रोटी का दान, प्यासा है पानी का दान, रोगी है औषधि का दान, समय समय पर जैसी आवश्यकता है, जिसको जैसी आवश्यकता है वैसा दान देना चाहिए। लेकिन जिसको दान दे रहा है अगर वो व्यक्ति शीलवान है तो दान का फल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो दान देने वालों को सारी बात देखनी पड़ती है, किसको दान दे रहा हूँ, मैंने दान का बीज बोया, धर्म का बीज बोया, उपजाऊ धरती होगी तो उसका फल बहुत अच्छा आएगा। तो कैसी धरती में मैं दान का बीज बो रहा हूँ, इसके लिए भी सजग रहना पड़ता है। दान एक बहुत महत्वपूर्ण मंगल है, इसके अनेक पहलू हैं, और समझेंगे इसे और विस्तार से समझेंगे तो मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। दान गृहस्थ के लिए महामंगल, महामंगल।